लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों को लोभ से बचने की चेतावनी दी, जो हर एक व्यक्ति के हृदय में होता है, जो हमें ईश्वर के प्रेम एवं उनके अनंत वरदान की खोज करने की अपेक्षा लालच और धन की सेवा करने की ओर अग्रसर करता है। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 31 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
नेल वांजेलो देला लिटुर्जिया ओडियर्ना un uomo rivolge a Gesù questa richiesta. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità.
आज की धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में एक व्यक्ति यीशु से यह आग्रह करता है, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। संत पापा ने कहा, यह एक सामान्य परिस्थिति है। इसी तरह की समस्याएं आज भी आम हैं। दुर्भाग्य से कितने भाई और बहनें, एक ही परिवार के कितने सदस्य अपनी संपत्ति के लिए आपस में लड़ते हैं, शायद एक दूसरे से बात भी नहीं करते। सुसमाचार के उस व्यक्ति को जवाब देते हुए यीशु मामले में प्रवेश नहीं करते, बल्कि विभाजन के मूल कारण संपत्ति के अधिकार पर जाते हैं। वे कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचते रहो। उन्होंने कहा, लोभ क्या है? यह संपत्ति पर बेलगाम लालच है, हमेशा अधिक धनी होने की चाह। यह एक बीमारी है जो लोगों को नष्ट करती है, क्योंकि संपत्ति की भूख एक आसक्ति उत्पन्न करती है। खासकर जिनके पास बहुत अधिक होती, वे उससे संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा अधिक और सिर्फ अपने लिए पाना चाहते हैं, किंतु इस प्रकार व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। वह आसक्त होता और उन चीजों का गुलाम बनता है जो विरोधाभासी रूप में उससे मुक्त और शांत होने में मदद करने के लिए होते हैं। धन के द्वारा सेवा किए जाने के बदले वह धन का सेवक बनता है। संत पापा ने कहा, लोभ समाज के लिए भी एक गंभीर बीमारी है। लोभ के कारण आज हम दूसरे विरोधाभास में पहुंच गए हैं, ऐसा अन्याय जिसको इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, जहां थोड़े लोगों के पास बहुत अधिक धन है और बहुत लोगों के पास बहुत कम। हम युद्धों एवं संघर्षों पर गौर करें, संसाधनों एवं संपत्ति की तीव्र लालसा हमेशा उनके पीछे रहती है। युद्ध के पीछे कितना बड़ा स्वार्थ है, और निश्चय ही उनमें से एक है हथियारों का व्यापार। आज यीशु हमें सिखलाते हैं कि इन चीजों के केंद्र में हमेशा शक्तिशाली या कुछ निश्चित आर्थिक प्रणाली नहीं होती, किंतु लोभ होता है जो हर एक व्यक्ति के हृदय में है। अतः आइए हम अपने आप से पूछें, मैं संपत्ति से अनासक्त होने में किस स्थान पर हूँ? क्या मैं उन चीजों के लिए शिकायत करता हूँ जो मेरे पास नहीं है, अथवा क्या मैं उन चीजों से संतुष्ट हूँ जो मेरे पास हैं? धन और अवसर के नाम पर क्या मैं संबंधों और दूसरों के लिए समय का बलिदान करने के प्रलोभन में पड़ता हूँ? और क्या ऐसा भी होता है कि मैं लोभ की वेदी पर वैधता और ईमानदारी की बलि चढ़ा देता हूँ? संत पापा ने कहा, मैंने वेदी कही, क्योंकि चीज वस्तुएं, धन संपत्ति, समृद्धि एक उपासना, एक सच्ची और योग्य मूर्ति पूजा बन सकते हैं। यही कारण है कि यीशु कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम ध्यान दें कि यीशु ईश्वर और शैतान नहीं कहते, अथवा भला और बुरा भी नहीं कहते, बल्कि ईश्वर एवं धन कहते हैं। वह धन जिसको हमारी सेवा करना चाहिए, उसकी सेवा करना एक मूर्ति पूजा है, वह ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। इस तरह हम सोच सकते हैं कि धनी होने की चाह किसी को नहीं रखनी चाहिए। संत पापा ने कहा, निश्चय ही आप धनी होने की चाह रख सकते हैं। इसकी चाह रखना बुरा नहीं है। धनी होना खूबसूरत है, लेकिन ईश्वर के अनुसार धनी होना है। ईश्वर सभी लोगों से अधिक धनी हैं। वे सहानुभूति एवं दयालुता के धनी हैं। उनकी समृद्धि किसी को शक्तिहीन नहीं बनाती, झगड़ा एवं विभाजन उत्पन्न नहीं करती। यह एक ऐसी समृद्धि है जो देना, बांटना और साझा करना जानती है। संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, अच्छी तरह जीने के लिए भौतिक संपत्ति जमा करना काफी नहीं है, क्योंकि यीशु कहते हैं, किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती, इसके विपरीत अच्छे संबंधों से होती है, ईश्वर के साथ एवं पड़ोसी के साथ तथा उन लोगों के साथ भी जिनके पास कम संपत्ति है। अतः आइए हम अपने आप से पूछें, मैं किस तरह धनी बनना चाहता हूँ, ईश्वर के अनुसार अथवा मेरे लोभ के अनुसार? मैं किस तरह की विरासत छोड़ना चाहता हूँ, बैंक में रखे गए रुपये, भौतिक संपत्ति या मेरे आसपास खुशहाल लोगों, भले कार्य जिनको नहीं भुलाया जा सकता और ऐसे लोग जिनकी मदद मैंने उनके बढ़ने एवं परिपक्व होने के लिए की है? तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना की कि माता मरियम हमें यह समझने में मदद दे कि जीवन की सच्ची अच्छाई क्या है जो हमेशा टिकी रहती है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Concedi il Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने उन सभी लोगों से अपना आभार प्रकट किया जिन्होंने कनाडा की उनकी यात्रा को संभव बनाया तथा कहा कि वहां भी उन्होंने यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने संत इग्नासियस लोयला के पर्व की याद करते हुए अपने सभी जेसुइट भाइयों को शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने कहा, कल सुबह मैं कनाडा की 6 दिवसीय यात्रा के बाद रोम वापस लौटा। मैं इसके बारे अगले बुधवार को आम दर्शन समारोह में बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रायश्चित की तीर्थ यात्रा को संभव बनाया है। नागरिक अधिकारियों से लेकर मूलवासियों के नेताओं और कनाडा के धर्मदक्षों तक, मैं उन सभी को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा साथ दिया है। आप सभी को धन्यवाद। यूक्रेन की याद करते हुए संत पापा ने कहा, यात्रा के समय भी मैंने यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा जिन पर हमले और अत्याचार किए जा रहे हैं। मैंने प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें युद्ध की विपत्ति से छुड़ाए। उन्होंने कहा, यदि हम विनाश पर ध्यान देते हुए मुक्त होकर सच्चाई को देखें जिसको युद्ध हर दिन उन लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ला रहा है, तब एक ही तर्क किया जा सकता है और वह तर्क है रुकना और समझौता करना। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रज्ञा शांति की ठोस पहल को प्रेरित करे। तत्पश्चात संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। विभिन्न दलों का अभिवादन करने के पश्चात संत पापा ने येसु समाज के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, संत इग्नासियस लोयला के पर्व दिवस पर मैं अपने जेसुइट भाइयों का सास्नेह अभिवादन करता हूँ। आप प्रभु की सेवा में उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ते रहें। आप साहसी हैं। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस। आदि अनादि तू जीवन ज्योति तू, आदि अनादि तू जीवन ज्योति तू, तेरी ज्योत चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस तेरा साथ चाहिए, चलता रहूं मैं तेरी राह चाहिए, मुझे कुछ नहीं बस।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस सितंबर के मध्य में कजाकिस्तान की अपनी विदेश में 38वीं प्रेरितिक यात्रा करेंगे। विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस के अवसर पर नूर सुल्तान शहर का दौरा करेंगे। सोमवार को एक बयान में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने घोषणा की, नागर और कलीसिया के अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा फ्रांसिस इस साल 13 से 15 सितंबर तक विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस के अवसर पर कजाकिस्तान की घोषित प्रेरितिक यात्रा करेंगे। इस वर्ष के आयोजन का विषय महामारी के बाद मानवता के सामाजिक आध्यात्मिक विकास में विश्व और पारंपरिक विश्वासों के नेताओं की भूमिका होगी। हर 3 साल में दुनिया भर के धार्मिक नेता नूर सुल्तान में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की कांग्रेस में एकत्रित होते हैं। अप्रैल की शुरुआत में संत पापा फ्रांसिस ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव के साथ लाइव वीडियो बातचीत के दौरान इस संभावित यात्रा के बारे में बातें की। कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा से वापसी की उड़ान पर संत पापा ने कजाकिस्तान जाने की अपनी आशा दोहराई। और संत पापा फ्रांसिस शनिवार 30 जुलाई को कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा समाप्त कर वापस रोम लौटे। रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में हजारों विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के साथ मिलकर देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के पूर्व रविवार ये पाठ पर चिंतन किया। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रेरितिक यात्रा की सफलता के लिए विश्वासियों के समर्थन और प्रार्थना के लिए अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही संत पापा ने 31 जुलाई को संत इग्नासियुस के पर्व दिवस पर सभी येसु समाजी भाइयों को बधाई दी। संत पापा ने यूक्रेन के लिए प्रार्थना का अर्ज करते हुए ट्वीट किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, भौतिक वस्तुओं का संचय अच्छी तरह से जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि येसु कहते हैं जीवन उसमें शामिल नहीं है जो उसके पास है। इसके बजाय यह अच्छे संबंधों पर निर्भर करता है, ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ और यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिनके पास कम है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, मैं कनाडाई नागरिक अधिकारियों, मूल वासियों के प्रमुखों और धर्माध्यक्षों के साथ उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह प्रायश्चित यात्रा को संभव बनाया। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी प्रार्थना द्वारा मेरा साथ दिया। तीसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, आइए हम दुखित और पीड़ित यूक्रेनी लोगों के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। ईश्वर से उन्हें युद्ध के संकट से मुक्त करने के लिए कहें। एकमात्र न्याय संगत बात यह होगी कि इसे रोकें और बातचीत करें। विवेक शांति की दिशा में ठोस कदम लेने हेतु प्रेरित करे। चौथे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, लोयोला के संत इग्नासियस के पर्व दिवस पर मैं अपने येसु समाजी भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रभु की सेवा में जोश और आनंद से चलते रहें, साहसी बने। उधर येसु समाजियों के साथ संत पापा फ्रांसिस की बैठक में भाग लेने के बाद सोल्ट एंड लाइट मीडिया के CEO फादर एलन फोगार्डी निजी बैठक को शानदार बताया। वाटिकन न्यूज के ग्रिसेल्ला से बातचीत करते हुए फादर फोगार्डी ने उल्लेख किया कि संत पापा फ्रांसिस अपने भाइयों के साथ एक घेरे में बैठे थे और यह बैठक बहुत ही आरामदायक और व्यक्तिगत थी। कनाडा में संत पापा फ्रांसिस के बिताए महत्वपूर्ण सप्ताह को देखते हुए फादर फोगार्डी ने कहा कि किस तरह संत पापा ने हमें ऐसी छवियां दी जिनसे हम जुड़ सकते थे और सोच सकते थे कि हम वास्तव में व्यक्तियों के रूप में कैसे जुड़ सकते हैं। उनके सबसे सुसंगत बिंदुओं में से एक यह था कि प्रत्येक व्यक्ति मूलवासी और गैर मूलवासी सभी को एक साथ काम करना होगा और सभी को एक साथ काम करने का फैसला करना चाहिए। फादर फोगार्टी ने कहा, यह सिर्फ कनाडा नहीं है लेकिन दुनिया भर में, क्योंकि उपनिवेशवाद और मूलवासी हर जगह हैं। उन्होंने आगे कहा, उनके लिए यहाँ आना एक वास्तविक प्रयास था क्योंकि जैसा कि हम उन्हें अपने घुटने की तकलीफ से जूझते हुए देखते हैं, वे कलीसिया के प्रति प्रेम दिखाना चाहते थे। संत पापा यह दिखाना चाहते थे कि आगे भी तय करने का रास्ता है। उधर गत सप्ताह इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन द्वारा अलग अलग हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसार यूक्रेन 20 मिलियन टन से अधिक अनाज का निर्यात करेगा। इसी के तहत 16 जहाजों में से पहला जहाज आज सुबह 7:30 बजे ओडेसा के बंदरगाह से काला सागर पर निकल गया। 3 महीने के लिए वैध और विस्तार योग्य जुलाई में हुए समझौते पर तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के साथ हस्ताक्षर किए गए। समझौते में कहा गया है कि कार्गो 3 यूक्रेनी बंदरगाहों से प्रस्थान करते हैं, एक बिना गलियारे को पार करते हैं और काला सागर को पार करते हुए तुर्की के तटों तक पहुंचते हैं। वहां से पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात होगा। प्रोटोकॉल किसी भी युद्ध विराम का प्रावधान नहीं करता है। इस बीच यूक्रेन ने मास्को द्वारा देश के दक्षिणी हिस्से के एक शहर माइकोलाइव में भारी और क्रूर बमबारी की निंदा की है। अनाज के बड़े मालिक ओलेक्सी और उनकी पत्नी रायसा ने तोपखाने की आग में अपनी जान गंवा दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माइकोलाइव और पूरे यूक्रेन के लिए एक बड़ी क्षति की घोषणा की। राष्ट्रपति ने व्यापारी की गतिविधियों के 50 से अधिक वर्षों के दौरान देश के कृषि और नौसैनिक उद्योग के विकास में मौलिक योगदान को याद किया। उधर रविवार 31 जुलाई को पूरे रूस ने नौसेना दिवस मनाया। पुतिन पारंपरिक परेड के लिए संत पीटर्सबर्ग गए। अपने भाषण में क्रेमलिन के प्रमुख ने युद्ध का कोई संदर्भ नहीं दिया लेकिन जोर देकर कहा कि वर्तमान स्थिति में बहुत निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसा कि तास एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, पुतिन ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।